करें शुरू जी। सूरह तकवीर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़श्शम्स कुव्वरत व इज़न्नजूम नुक़दरत व इज़ल जिबाल सय्यरत व इज़ल इशार उत्तिलत व इज़ल वहूश हुश्शिरत। इसमें मैं बार बार एक बात आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। देखें, कुरान को अप्रोच करने के एक तरीका ये कि हम उसके ज़ाहरी और सतही, यानी अल्फाज के ज़ाहरी और सतही मफहूम तक रहें, और दूसरा जो तरीका है वो ये कि अल्फाज के ज़ाहरी और सतही मफहूम के हटकर गहराई में देखें कि वहाँ पे क्या असल में क्या कहा जा रहा है। जैसे शम्स, शम्स जो है ये रूह हैवानी, रूह इंसानी से ऊपर के दर्जे पे जो रूह आज़म का दर्जा है, जिसको आप रूहानी बंदे की रूह कह सकते हैं या रूहानियत के दर्जे की रूह कह सकते हैं, उसका नाम कुरान ने शम्स लिया है। शम्स को आप कुरान की एक इस्तलाह मान के तो रूह आज़म को शम्स मान लें, तो नजम जो होगा वो रूह हैवानी की रिप्रेजेंटेशन हो गई, और कमर जो है वो असल में रूहे इंसानी की रिप्रेजेंटेशन होगी। और इसी तरह ये जो जिबाल है, ये जबल जिबिल्लत की तरफ इशारा कर रहा है। जिबिल्लत यानी कोई चीज़ जो आपकी तबीयत में गाड़ दी गई। तो क्या चीज़ गाड़ दी गई? हमारी नेचर में जो चीज़ गढ़ती है वो है तबीयत, वो है हमारी आदतें। तो इनको अगर आप जिबाल मान लें तो बहुत कुछ क्लियर होता चला जाएगा, या उसके वो मफाहीम सामने आ जाएंगे जो कुरान के बातनी मफाहीम कहलाते हैं। इज़ा शम्स कुव्वरत, जब इसको रिवाइंड कर दिया जाएगा, कुव्वरत लपेट दिया जाएगा, जैसे एक फिल्म चलती है तो जब उसको रीप्ले पे लगाते हैं तो पहले आप उसे रिवाइंड करते हैं। तो असल में ये है कि रूह आज़म का सारा रिकॉर्ड रिवाइंड कर दिया जाएगा। ये आज की टर्मिनोलॉजी में गोया इसका मफहूम ये है। सूरज को लपेट दिया जाएगा का क्या मतलब है? व इज़न नजूम नुक़दरत, नजूम कद्दरत, सॉरी माफी चाहता हूँ, और जब सितारे झड़ जाएंगे, नहीं मतलब है कि जब रूह हैवानी की सतह का रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया जाएगा। व इज़ल जिबाल सय्यरत, और जब आपके जबिल्लत को हटा दिया जाएगा, अब ये देखें ना, पहाड़ चलाए जाएंगे। अब ज़रा ये अगला तर्जुमा देखें, व इज़ल इशार उत्तिलत। अब इशार का क्या मतलब है? अब यहाँ पे दसवां महीने की ऊँटनी कर दिया, हालांकि इशार भाई दस क्यों चीज़ें क्यों नहीं कर रहे? इशार अशर से है ना, तो उत्तिलत मतलब है कि आप उन्हें बेपरवाह हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। यानी जब आदमी दूसरे जहां में ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो यहाँ की दसियों चीज़ें जो हैं वो आपकी तवज्जो नहीं जज़ब कर रही होती हैं, आप हटा देते हैं। वह इज़ल वहूश हुश्शिरत, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहशी जानवर जो हैं वो जमा कर दिए जाएंगे। नो, आप गौर करें कि किसी भी क्लैमिटी में, किसी भी आफत की सूरत में, किसी भी जलजिले की सूरत में, किसी भी तूफान की सूरत में क्या होता है? जानवर इधर उधर भागते हैं। ये हुशरत का मतलब क्या हुआ? जब इंसान की सारी वहशतें एक नुक्ते में जज्ब हो जाती हैं, जब वो वहशतों वहूश यानी के बेकाबू होने के सारे जज्बे, सारे जज्बात, वैशी जज्बात एक नुक्ते में से मटाते हैं। वह इजल बिहार सुज्जरत, और जब इल्म खुल जाता है यानी बहर रूहानियत में इल्म की नुमाइंदगी अगर करे तो देखे ना एक वसी अरीज बेकिनार लामहदूद हद तक फैला हुआ क्या चीज है, तो वो इल्म है। वह इजल बिहार सुज्जरत वह इजन नफूस जुव्वेजत, और जब नफूस आपस में जोड़ दिए जाएंगे। जरा गौर करें कि क्या अजीब बात है, ये बहुत ही बारीक और बहुत जबरदस्त नुक्ता है। मैं चाहूंगा कि जरा इस पे आप गौर करें। देखिए हर आदमी हर औरत दोहरे जोड़ों की सूरत में है, ठीक है, मर्द और औरत। हम सिर्फ जौज यहां तक लेते हैं, लेकिन क्या खुशी और गम एक जोड़ा नहीं है? क्या बीमारी और सेहत एक जोड़ा नहीं है? क्या पॉजिटिव नेगेटिव एक जोड़ा नहीं है? अगर इनको जोड़ दिया जाए तो क्या रहेगा? न्यूट्रलिटी, सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। वह इज़न नफूस ज़ुव्वेजत, जब हर चीज के को जोड़ दिया जाएगा उसके अपने जोड़े के साथ तो क्या रहेगा बाकी? देखे ना, ना सेहत रही ना बीमारी रही। जब बंदा फौत हो रहा होता है या गहरी नींद में चला जाता है तो ना वो सेहतमंद रहता है ना वो बीमार रहता है, हाँ या नहीं? आवाज आ रही है? ये इससे अगली आयत जो है वो एक और आपको झटका लगेगा। वह इजल माउदत सोएलत, माउदा अब आपने कर दिया कि वो जो जिंदा दरगोर की हुई बच्ची, उससे पूछा जाएगा। अब ईमानदारी से बताएं आपके इल्म में कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बच्चियां गाड़ी? तो जवाब है कोई भी नहीं, हाँ या नहीं? अब अगर आप कहें जी ये उस वक्त होता था, तो मुझे नहीं समझ आती कि कुरान में जब एक बात आ गई तो वो तो अजल तक चलेगी, उसका माजी से क्या ताल्लुक हुआ? सिर्फ माजी से कोई ताल्लुक नहीं है, एक ऐसी बात हो रही है जो आज भी जा रही है। वह इजल माउदत सोएलत, अब लफ्ज माउदा को सुन लें, माउदा का लुगवी मतलब है जिसका वादा किया गया हो। जब हम किसी चीज का वादा करते हैं तो कहते हैं ना उसने माउदा वक्त से पहले ये अदायगी कर दी। तो वह इजल माउदत सोएलत, वो जिसका वादा किया गया उसके बारे में पूछा जाएगा। बेईया जिम्बिम कुत्तेलत, कि किस वजह से, किस गुनाह में या किस खामी से, किस कमजोरी की वजह से आपने उसे नीचे गिरा दिया। कुत्तेलत कत्ल के लफ्ज की वजह से पीछे जाना जाके आपने वो माउदा का तर्जमा दूसरा कर दिया, क्योंकि आप ये बात मानने पे आमादा नहीं है कि कुत्तेलत का मतलब कत्ल करना ही नहीं है, बल्कि कत्ल का एक मफहूम नीचे गिरा देना है, किसी चीज को जाया कर देना है। वह इज़्ज़त सहूफ नुशरत, और जो सहीफा है उसे नशर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि सहीफे से मुराद हमारे जहन में हायर लेवल पे जो लिखाई हुई है, जो रिकॉर्ड है, जो चीजें हमारे जहन में क्या कहते हैं जहन नशीन की हुई है, उसको नशर करना शुरू कर दिया जाएगा। यानी जो कुछ आपके गहराई में वाकया इल्म है वो भी सामने आ जाएगा। वह देखे ना, अगली आयत देखें, वह इज़्ज़त समाओ कुशतत, और जब शऊर खोल दिया जाएगा। वह इज़्ज़त जहीम सोएरत, और जहां जहां आप रुके हुए थे वो सामने लाया जाएगा, उसको ताज़ा कर दिया जाएगा। आप पता चल जाएगा मैं कहाँ कहाँ अटका रहा, मैं कहाँ कहाँ रुका रहा, जहीम कहते हैं रुकने की जगह, जैसे दलदल में पांव फंस जाए उसको जहीम कहते हैं। वह इज़ल जन्नतो, वह इज़ल जन्नतो उज़लिफत, ये लफ्ज अरबी में जुल्फ का मतलब है कुर्बत, जुल्फ का मतलब करीब होना। वह इज़ल जन्नतो उज़लिफत यानी जब जन्नत करीब लाई जाएगी, यानी जो उसने जहाँ वो रुका रहा उसका जहन अटका रहा वो भी सामने लाया जाएगा, और जो खुशी के लम्हात गुजारे उसने जहाँ जहाँ वो खुश हुआ वो भी सामने आया जाएगा। आलमत नफ्सुन मा अहजरत, और नफ्स जान लेगा यानी कि उसके सामने क्या हाजिर है, यानी क्या चीज उसको दरपेश रही, वो सब बातें चाहे दरपेश रही या उसके सामने थी, तो नफ्स जो है वो उसको जान लेगा कि अल्लाह ने उसको क्या क्या मौके दिए, उसके सामने क्या क्या पेश किया गया, वो आगे से क्या चुनता रहा, वो सब उसको क्लियर हो जाएगा। फला उक्सिमु बिल खन्नस, अब यहाँ पे एक और तर्जुमा जरा सुन लीजिए, फला फे आ गया पास, ला नहीं। अब ये उक्सिम का तर्जुमा हमने कर दिया कसम है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब बात है, देखें ये किस्म से लफ्ज़ फला उक्सिमु मत तकसीम करो बिल खन्नस, खन्नस किसे कहते हैं, पीछे हटने वाले। देखिए कुदरत ने एक निज़ाम बनाया, आपको रूह की तवानाइयाँ दी ताकि आप आगे बढ़ें, अगर आप पीछे हटते हैं तो ये ज़हनी पीछे हटना ज़हनी तौर पे किसी बात से, इसीलिए मुर्तद की सज़ा क्या है, क्योंकि वो आगे बढ़कर पीछे हटा है। तो फला उक्सिमु मत तकसीम हो जाओ बिल खन्नस, यानी पीछे हटने वालों को में तकसीम मत हो जाओ, अपनी यकसुई को कायम रखो, और जो पीछे हटाने वाले क्या हैं, जवारिल कुन्नस, जवार कहते हैं, कहते हैं ना जवारे रहमत में जगह दे, जवारे रहमत में जगह दे यानी के इन द प्रिसेंट्स ऑफ योर मर्सी, मर्सी के हाता जवारिल कुन्नस, कुन्नस कहते हैं फिर वही रुकने की बात, यानी रुकना या पीछे हटना, ये दो चीज़ें कुरानी तालीमात के खिलाफ हैं। फला उक्सिमु बिल खन्नस मत तकसीम हो जाओ बिल बिल साथ पीछे हटने वालों के, और ना ही यानी रुकने वालों में शामिल हो जाओ। वह लैले इज़ा अस अस, और रात के हवास का सहारा लो, वह लैले इज़ा अस अस क्या, जब वो अब इन्होंने कर दिया पीठ दे, यानी कि जब वो रिसीड करे, जब वो पीछे हट रही है रात, यानी रात के हवास को काबू में रखना। वह सुबह इज़ा तनफ्फुस, और जब देखे ना रात पीछे हटेगी, यानी आपके ये लैल जो है ये हवास की वो रफ्तार है जिससे आप नींद की हालत में दो चार होते हैं, जब वो पीछे हटे कम होना शुरू हो और सुबह सांस लेने लगे, इज़ा तनफ्फुस, सुबह का मतलब क्या होता है, जब उस पर सुर्खी आ जाए या जब वो रोशनी आ जाए, यानी कि जब हवास की रफ्तार कम होते होते दिन के हवास में ढलना शुरू हो जाए, तो क्या करना है, यानी कि ये सारा क्या, जब रात के हवास पीछे हट रहे हो यानी स्लो डाउन हो रहे हो और दिन के हवास का गलबा हो रहा है, तो वहाँ पे रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना। इन्नहु लकौले रसूलिन करीम, इन्नहु लकौलो रसूलिन करीम, और ये कौल है अल्लाह की तरफ से भेजे हुए एक बड़े करीम हस्ती का, यानी करम करने वाली, ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शिल मकीन, और उसको अर्श के मकीन की तरफ से बड़ी ताकत अता की गई है, या वो बड़ी कुवत वाला है अर्श के मकीन के नज़दीक, इंदा के नज़दीक। मुताइन सुम्मा आमीन, मुताइन उसकी अतात की जाती है, सुम्मा क्योंकि, आमीन। अब ये लफ्ज़ आमीन हम दुआ के आखिर में भी कहते हैं, इसका असल मफहूम है अमन में रहने वाला, यानी ये लफ्ज़ का मादा है अमन, अमन में रहने वाला। यानी जब हम दुआ ख़त्म करते हैं तो हम कहते हैं ना आमीन, तो हमारे यहाँ तो तर्जमा ये किया गया कि तू मेरी बात मान, तू मेरी दुआ कबूल फरमा, नहीं ये कोई कमांड नहीं है, ये इत्तला ये है कि जी मैंने अपना मामला आपके हवाले कर दिया और मैं अमन में आ गया, आमीन। अब यहाँ पे सुमा आमीन, अमानतदार, अमानत वाला, ये सारे तर्जमे पता नहीं कैसे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक ये इसका मादा चूँकि अमन है तो ये जाएगी बात के वो अतात करवाता है और फिर बड़े सुकून में भी है, इसलिए अगर आप उसकी अतात करेंगे तो आप भी अमन में आ जाएंगे। व मा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारा साहिब, व मा नहीं है, साहिबुकुम तुम्हारा साहिब, साहिब किसे कहते हैं जिसकी सोबत आपको हासिल हो, बेमजनून कोई जनून वाला नहीं है, वाला कद राह हो बिल उफ़्क़िल मुबीन, और बेशक उसने देखा उफक, खुले उफक पे, यानी दोनों चीज़ें जहाँ मिलती हैं, उफक कहते हैं जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं, जहाँ आपका मादी और रूहानी शऊर मिक्स होता है, वहाँ पे उसने देखा, ठीक है। व मा हुवा अलल गैब बेदनीन, और वो गैब को, गैब पे मतलब बुखल नहीं करता, बेदनीन यानी कंजूसी नहीं करता, छुपाता नहीं, कम नहीं बताता, जो वो गैब में से उसको इत्तला मिलती है वो पूरी बात बताता है, व मा हुवा, और वो नहीं करता, ठीक है। अलल गैब, गैब पर, बिदनीन यानी कि कुछ कमी नहीं करता, वह मा होवा बेकौल शैतान रजीम, और ना ही वो कोई शैतान जिसको रजम कर देना चाहिए उसके कहे में आता है, यानी कि ना ही ये सारी बातें जो हैं ये कोई शैतान मर्दूद की बातें हैं। फैन तजहबून, तो फिर तुम किधर फिरे जा रहे हो, फैन तजहबून, तो फिर तुम किधर मुड़े जाते हो, किधर हट रहे हो। इन्ना होवा इल्ला जिक्रो जिक्रुन लिल आलमीन, और ये तो कुछ नहीं है सिवाय इसके, ये है जिक्र आलमीन के, लिल आलमीन, आलमीन के लिए, एक ऐसी याद दहानी, एक ऐसी याद जो हर हर हालत में काम आती है या हर हर हालत के लिए है, यानी ये बातें ऐसी पाइंदा बातें हैं जिनको हर हालत में, आपने कह दिया कि ये तो कहीं दूसरे जहानों को बताने की बातें हैं, नहीं, हर आदमी खुद अपने अंदर कई दुनियाओं का हामिल है, ये उन सारी दुनियाओं के लिए भी है, ये जो हमारी हालतें हैं, मसलन बचपन है, मसलन जवानी है, मसलन उधेड़ उम्री है, मसलन बुढ़ापा है, मसलन नकाहत है, मसलन जोशो जज्बा है, कहते हैं ना आलम में जवानी तो आलम में गैज़ो गज़ब, ये हर हर हालत को भी तो आलमीन ही कहेंगे ना, तो ये बता के कि ये हर हालत के लिए याद दहानी है, ले मन शाह मिनकुम अन यस्तकीम, तो फिर तुम में से जो चाहे, मिनकुम तुम में से जो चाहे, अं यस्तकीम, वो इस पे कायम हो जाए। यस्तकीम, आपने अब सिरात मुस्तकीम का तर्जमा किया हुआ है, सीधा रास्ता। सीधा नहीं है, सीधे से कोई मुराद नहीं, क्योंकि मुस्तकीम फारसी में सीधे को कहते हैं। अब फारसी के लफ्ज़ का अरबी के लफ्ज़ से क्या तर्जमा हो सकता है? मुस्तकीम, खते मुस्तकीम कहते हैं ना फारसी में, खते मुनहनी और खते मुस्तकीम। तो लिमई शाह, फिर जो तुम में से चाहे, मिन कुम, तुम में से जो चाहे, आई यस्तकीम, उसको चाहिए इस पे कायम हो जाए। और ये आखिरी आयत तो क्लासिक है, कमाल है। इसका तर्जमा जो इन्होंने किया है वो छोड़ दें। वह मा तशाउना, और तुमको नहीं चाहना चाहिए, इल्ला सिवाय, अन यशाउल्लाहु रब्बुल आलमीन, जो अल्लाह चाहता है, जो रब है आलमीन का। आलमीन से मुराद दुनियाएं भी और आपकी हर हर हालत भी। क्या कहा आपने? कर दिया वह मा तशाउना, तुम चाह नहीं सकते, इल्ला अन यशाउल्लाह, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहता है। और यहाँ सारी बदकारियां कर रहे हैं तो इल्ज़ाम अल्लाह पे देते हैं, जी भी अल्लाह यही चाहता है। तौबा नऊज़ु बिल्लाह। देखिए वह मा तशाउना, मत चाहो, नहीं चाहना चाहिए तुमको, इल्ला सिवाय, अन यशाउल्लाह, जो अल्लाह चाहता है। यानी हमें वो चाहना चाहिए जो अल्लाह चाहता है। और अल्लाह कौन है? जो रब्बुल आलमीन है। अब जरा गौर करें कि अगर हमें सिर्फ इस एक आयत के कारबंद हो जाएं तो हम क्या बन गए। यानी हमें ये शऊर आ जाए कि हम वो ना चाहें जो अल्लाह नहीं चाहता, और वो चाहें जो अल्लाह चाहता है। तो मुझे बताएं आप क्या बन गए। हम लोग अपनी मर्जियां करने की वजह से क्या कहलाते हैं जी? क्या कहलाएंगे भाई? जाहिर है अगर आप अपनी मर्जी करते हैं तो अल्लाह की बात को रद्द करने के नतीजे में क्या कहलाएंगे? को जी कहने का हौसला नहीं है, कहते तो ऐसे को काफर ही हैं। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चन? आमीन जी। जी हाँ, देखे ना, बात ना मानने वाला बात को पे रद्द, आपकी बात को कौन रद्द करेगा? जाहिर है जो अपनी बात को इम्पोर्टेंट समझेगा, अपनी बात पे कायम रहेगा। अब अबू जहल ने क्या किया? उसने साफ कहा हुजूर अलैहिस्सलाम से कि भाई तुम जो कह रहे हो वो मैं नहीं मान सकता, इसलिए कि मेरे जाती मफादात पे जरब पड़ती है। उसने इनकार किया। इनकार किस बिना पे किया? क्योंकि वो अपनी मर्जी करना चाहता था, वो अल्लाह की मर्जी पे नहीं आना चाहता था। तो जो अल्लाह की मर्जी नहीं करता उसे क्या कहते हैं भाई? जो अपनी मर्जी करेगा वो क्या हुआ? यहां पे एक लतीफ बात आपको सुना दूं। ये मर्जी का लफ्ज जो है ना अरबी में, मर्जी छोटी ये बाद में लगे तो ये होता है मेरी। तो मर्ज कहते हैं बीमारी को, तो मर्जी, मेरा मर्ज। हमारी मर्जियां तो हमारा मर्ज है असल। ठीक हो गया? चलें, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।